നമോ അർഹന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആര്യാണം നമോ ഉപജ്ജായാണം നമോ ലോയ സഹൂണം. भगवान की समवसरण सभा में देव और देवियों के आठ कक्ष होते हैं. तिर्यंचों का एक कक्ष होता है, नारियों का एक कक्ष होता है, पुरुषों का एक कक्ष होता है और मुनिराजों का एक कक्ष होता है. कुल मिलाकर 12 कोष्ठ होते हैं वहां पर और उनमें सभी प्रकार के देव जो जो अभव्य नहीं है और जो मिथ्यात्व को मानस स्तंभ के पास छोड़ करके आए हैं, वो धर्म श्रवण करते हैं. मानस स्तंभ मान वालों को वहीं स्तंभित कर देता है, रोक देता है और जब वो ऊपर दर्शन करते हैं तब उनका मान समाप्त हो जाता है. इसके लिए एक कथानक उपलब्ध होता है कि जब इंद्रभूति गौतम अपने ज्ञान के अहंकार में चूर होकर अपने दो भाई अग्निभूति और वायुभूति के साथ अपने शिष्यों को लेकर, 500-500 शिष्य थे तीनों के, मानसस्तंभ के निकट आते हैं तो वो उस स्तंभ को देखते हैं. सबसे पहले तो हरिवंश पुराण में जिनसेन आचार्य लिखते हैं कि मानसस्तंभ जो होता है वो चौकोर नहीं होता, षटकोण नहीं होता, अष्टकोण नहीं होता, 10-12 आदि कोण वाला नहीं होता. वो पूरा स्तंभ स्फटिकमय होता है और उसमें 2000 कोण होते हैं और भगवान की ऊंचाई से 12 गुना होता है. आदिनाथ भगवान का मानस स्तंभ 6000 धनुष ऊंचा था और उसके दर्शन के लिए एकदम पास से खड़े होकर तो दर्शन होते ही नहीं है, पीछे हटना होता है. और ये घटना सूचित करती है कि मानियों की गति आगे नहीं पीछे होती है. फिर जब वो पीछे जाकर दर्शन करते हैं उनका मान गलित होता है, नतमस्तक होते हैं, तो विनीतों की गति आगे होती है. विनम्र होने के बाद उनको आगे बढ़ने मिलता है और फिर वो आगे बढ़कर अंत में जो सभा भूमि है, 8 भूमियां होती है समवसरण में, तो अंतिम जो है सभा भूमि, उस सभा भूमि में प्रवेश करते हैं. 4 परकोटे होते हैं समवसरण में, माणिक्य, हेम, रजत और स्फटिक. माणिक्य का परकोटा होता है, हेम स्वर्ण का परकोटा होता है, रजत का परकोटा होता है और स्फटिक का परकोटा होता है. स्फाटिकोन्तर नृसर मुनि सभा पीठिका अग्री स्वयंभू. और स्फटिक के परकोठे के अंदर जो 12 कक्ष हैं और 3-3 कक्षों के बीच में एक मार्ग है, 4 दिशाओं से आने वाले 4 मार्ग है प्रवेशकों के. इसको प्रतोली भी बोलते हैं, मुख्य द्वार के साथ में अंदर प्रवेश होता है, स्वागत भी होता है वहां पर. कई देव स्वागत के लिए ही खड़े होते हैं. और धर्म चक्र को धारण किए हुए सर्वान यक्ष वहां पर उपस्थित होते हैं। सनत कुमार यक्ष, जैसे चक्रवर्ती का एक चक्र होता है वो विजय चक्र होता है, सब छह खंडों पर विजय प्राप्त करने वाला वो चक्र। तीर्थंकर का जो चक्र होता है वो धर्म चक्र होता है, सर्वत्र प्रभावना करने वाला, मिथ्यात्व को दूर करने वाला वो चक्र होता है। तो उसको लेकर भी ये देवलोग खड़े होते हैं और भगवान के बीच में जो सिंहासन होता है कमल के ऊपर, सिंह भी उसमें रहते हैं, कमल भी होता है, ऊपर आसन भी होता है, उससे भगवान चार अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। स्वर्णमय आसन होता है, रत्न जड़ित आसन होता है और भगवान ऊपर विराजमान होते हैं, उसका स्पर्श किए बिना विराजमान होते हैं। गंधकुटी, वो बीच वाला जो स्थान है उसको गंधकुटी कहते हैं। और अशोक वृक्ष, अष्ट प्रातिहारियों से मंडित जिनेन्द्र देव वहां विराजमान रहते हैं और उनके निकट जिन पासे चिट्ठन्ते, उनके शासन यक्ष और यक्षी वहां पर रहते हैं। वहां भगवान के पास में सबको रहने का अवसर नहीं मिलता है, जो पूजा करने जाते हैं वो वहां निकट जा सकते हैं। जितने भी 12 कक्ष के जितने सदस्य हैं वो सर्वप्रथम वहां आकर के भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, 3 प्रदक्षिणा, और फिर तीसरे पीठ पर रखे हुए पूजा के सुंदर द्रव्यों से, जो साथ में नहीं लाए द्रव्य, जो लाए हैं वो अच्छी बात है, नहीं लाए तो फिर उन द्रव्यों से भगवान की भव्य पूजा करते हैं। इंद्राणी जो चूर्ण पूजा करती है उसका वर्णन करते हुए भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान की कथा में महापुराण में लिखा है कि वो रत्नों के चूर्ण से मांडना बनाती है, तो वो मांडना जो बनता है वो चूर्ण पूजा है और उस पर फिर विभिन्न प्रकार के द्रव्य भगवान के लिए अर्पित करती है, जो जिस विधि से अर्पित करने योग्य है उसको उस विधि से अर्पित करती है। और सभी चतुर निकाय देव, उनकी देवियां सब अपनी अपनी सामग्रियों से, और जो सामग्री नहीं ला पाते हैं उनके लिए वहां पर उपलब्ध सामग्रियां हैं। यहां तक कि तिलोय पंडित्य ग्रंथ में आचार्य यति वृषभ स्वामी ने लिखा है कि गणधर भी भगवान की अर्चना करते हैं। देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं, वैसे आपने पहले भी सुना है पर अभी अपनी धारणा ऐसी बनी है ना कि मुनि महाराज द्रव्यों को हाथ नहीं लगाते, तो आप यहां देखिए शास्त्र में क्या कह रहे हैं। चौथो महाधियारु, चतुर्थ महाधिकार तिलोय पंडित्य ग्रंथ का, उसमें लिखा है कि तीर्थंकर भगवान के समवसरण में आरुहि दूणम तेसुम गणहर देवादि बारस गणाते कादूणम विपदाहिण मच्छन्ति सम्मुहम नाहम। 20,000 सीढ़ियां हैं, उन पर आरुहि दूनम, आरूढ़ होकर चढ़कर गणहर देवादि बारस गणा, गणधर देव को आदि लेकर जो 12 समूह हैं, ते वे प्रसिद्ध 12 समूह हैं, कल्पवासी देव, कल्पवासी देवियां, भवनवासी देव, भवनवासिनी देवियां, व्यंतर देव, व्यंतरी, व्यंतरी देवियां, ज्योतिष के देव, ज्योतिषी देवियां, फिर पुरुष, नारी, तिर्यंश और मुनिराज, ये सब 12 समूह उन 20,000 सीढ़ियों पर आरूढ़ होकर ते कादूण वे पदाहिणम, पहले तो प्रदक्षिणा लगाते हैं, 3 परिक्रमा लगाते हैं भगवान की, 3 लोक के नाथ हैं उनकी 3 परिक्रमा लगाते हैं। और तीन लोक के नाथ तब बने जब उन्होंने तीन लोक में भटकना बंद कर दिया। तो तीन लोक के नाथ की प्रदक्षिणा से प्रदक्षिणा लगाने वालों का भी तीन लोक संबंधी भ्रमण दूर हो सकता है। तो फिर प्रदक्षिणा लगाकर फिर सम्मुहम भगवान के सन्मुख होकर नाहम अच्छन्ति, वो जो नाथ है त्रिलोकी नाथ, उनकी अर्चना करते हैं। अब अर्चना करते हैं ये शब्द लिखा है, तो यहां पर गणधर देव आदि 12 समूह भगवान की अर्चना करते हैं। अब 12 समूहों में मुनिराज भी आते हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। और फिर कोई ऐसी कल्पना करना भी उचित नहीं है कि नहीं वो भाव पूजा करते होंगे, द्रव्य पूजा नहीं करते। तो ये अपनी धारणा के अनुसार अपन घटित करना चाहते हैं किसी घटना को। वस्तुतः वहां पर क्या घटना हो रही है इसको अपन कभी कभी शास्त्रों से पूरी तरह समझने में कुछ आनाकानी कर जाते हैं। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि वो सचमुच अर्चना करते हैं मुनिराज। कैसी अर्चना करते हैं देखिए, आप वो पंक्ति भी देख लीजिए। और केवल एक स्थान पर नहीं, अन्य स्थानों पर भी इसका विवरण आता है। मूलाचार के मूल गुणाधिकार में गाथा क्रमांक 24 है, उसमें आचार्य लिख रहे हैं, उस हादि जिण वराण नाम निरुत्तिम गुणाणु कितिंच काऊण चिदूण तिशुद्ध पणमो थवोणीयो। वृषभादि जो 24 तीर्थंकर हैं उनके नामों की निरुक्ति का अर्थ है व्युत्पत्ति, उनके नाम कैसे बने हैं। और गुणानुकीर्ति, गुणानुकीर्तन, दोनों प्रकार से भगवान की स्तुति करके काऊण स्तुति की, फिर अच्छी दूण अर्चना करते हैं। देखिए इससे स्पष्ट हुआ कि स्तुति करना अर्चना नहीं है, अर्चना स्तुति से भिन्न है। और फिर तिशुद्ध प्रणमो, फिर तीन शुद्धि के साथ में प्रणाम करते हैं, मन से वचन से काय से तीर्थंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। थवोनेव, इसको स्तव नाम का मुनिराजों का षडावश्यकों के अंतर्गत दूसरा आवश्यक जानना। तो अच्छी दूण, अब इतनी सारी क्रियाएं की है उन्होंने, और उस क्रिया उन क्रियाओं में एक अर्चना नाम की क्रिया है। अर्चना क्या है तो उसकी व्याख्या में देखिए आप, इसमें कोई किसी को हम बाध्य नहीं कर रहे हैं, जिनको मानना है माने, न मानना हो न माने, और सुनना हो सुने, न सुनना हो तो कान भी बंद कर सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता है। अर्चयित्वा, मुनिराजों का ग्रंथ मूलाचार उसकी 24वीं गाथा में मूल गाथा में वट्टकेर आचार्य अच्छी दूण शब्द का प्रयोग कर रहे प्राकृत में है, और संस्कृत टीका में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहे हैं अच्छी दूण अर्चित्वा अर्चयित्वा, अर्चन करके। कैसे अर्चन करके, तो आचार्य लिख रहे हैं च गंध पुष्प धूप दीपादि भी प्रासुक ही, प्रासुक गंध, प्रासुक पुष्प, प्रासुक धूप, प्रासुक दीप आदि के द्वारा। और ये सब कहां से आ गए द्रव्य मुनि महाराज के पास, तो उसका उत्तर दे रहे हैं आनीत ही, आनीत है, किसी के द्वारा लाकर के दिए गए हैं। साधु ने उनसे नहीं कहा कि तुम मुझे लाकर के दो, द्रव्य तैयार करने का उपदेश अगर साधु करते हैं तो उनके लिए प्रायश्चित बताया है। तो साधु ने उनसे नहीं कहा कि तुम मुझे द्रव्य ला करके दो, आनी थी वो ऑटोमेटिक स्वयं लेकर के आए हैं। हो सकता है उन श्रावकों ने मूलाचार ग्रंथ का अध्ययन किया हो और उनको जानकारी हो कि ऐसा शास्त्रों में प्रावधान है साधुओं के लिए, तो आनी तई ही लाए हुए और कैसे हैं, दिव्य रूप ही मनोहर रूप वाले हैं। ये द्रव्य सुंदर है, अभिप्राय ये हुआ। और दिव्य ही, दिव्य शब्द का अर्थ क्या लेना है यहां पर, निराकृत मल पटल सुगंध ही, उसमें से जो अशुद्धियां होती, कई बार द्रव्यों का शोधन करना होता है, अच्छी तरह से शोधन करना होता है, तो यहां पर कह रहे हैं निराकृत मल पटल। निराकृत मल पटल का अर्थ होता है जो शोधन योग्य है, मतलब जिसमें से पूरा वो हिस्सा अलग किया जा चुका है जो चढ़ाना नहीं है भगवान को, शोधित और सुगंधित, और जो सुगंधित है उन द्रव्यों के द्वारा अर्चनम कृत्वा, मुनि महाराज अर्चन करके, किनका अर्चन करके, चतुर्विंशति तीर्थकर पद युगलानाम, 24 तीर्थंकरों के चरण युगलों का अर्चन करके अन्यस्य अश्रुतत्वात् तेषामेव ग्रहणम्। और सबके अर्चना नहीं करते हैं मुनि महाराज, तीर्थंकरों के चरण युगल की अर्चना करते हैं, अन्य की अर्चना कहीं शास्त्रों में सुनने में नहीं आती। शास्त्र आदि देखो, शास्त्र की अर्चना भी कर सकते हैं, 24 तीर्थंकरों के चरणों की बात की है तो उपलक्षण न्याय से उस श्रेणी में जो आएंगे, जो मुनियों के लिए आराध्य की श्रेणी में आएंगे उनकी वो अर्चना करेंगे, अन्यस्य अश्रुतत्वात्, अन्य किसी की अर्चना नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उसका कोई आगम उपलब्ध नहीं होता। तो ध्यान में रखने की बात है कि जो मुनिराज हैं वो शासन देवताओं की आराधना नहीं करेंगे, मुनिराज जो हैं वो अन्य विद्या देवताओं की भी आराधना नहीं करेंगे, ये एक सामान्य नियम है कि वो आराध्य की श्रेणी में आने वाले जो भी हैं उन्हीं की आराधना करेंगे। और ऐसा करके तिशुद्ध प्रणम, तीन शुद्धियों के साथ प्रणाम करते हैं तो उसका नाम षट आवश्यकों में दूसरा आवश्यक चतुर्विंशति स्तवन कहलाता है। तो इससे आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि मुनिराज भी द्रव्यों के माध्यम से अर्चना कर सकते हैं। वो द्रव्य कैसे होने चाहिए, शोधित होने चाहिए एक बात, और कैसे होने चाहिए, प्रासुक होने चाहिए। प्रासुक का अर्थ होता है निर्जंतुक, जिन द्रव्यों में जीव जंतु ना हो उनको प्रासुक कहते हैं। और कैसे होने चाहिए, तो बोले आनीत होने चाहिए, स्वयं तैयार किए हुए नहीं होने चाहिए, वो लाकर दिए हुए होने चाहिए, और मंगवाए हुए अथवा तैयार करवाए हुए भी नहीं होने चाहिए। पूजा आरंभम कारावेदी, प्राकृत गाथा में लिखा है कि जो पूजा विषयक आरंभ करवाते हैं वे साधु प्रायश्चित के पात्र होते हैं। तो अब आप बताइए कि समवसरण में जो द्रव्य रखे हुए हैं वो भगवान की अर्चना के लिए ही रखे हुए हैं और 12 समूह के लिए रखे हुए हैं, 12 समूह के लिए, उसमें एक भी समूह न्यून नहीं है। मुनिराज वहां पर यह नहीं लिखा 11 समूह, क्या लिखा है, 12 गणाते गणधर देवादि। सबसे पहले नाम लिया गणधर देव का, गणधर देव को आदि लेकर जो 12 समूह हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रदक्षिणा लगाते हैं। और समूहम नाहम अच्छन्ति, सम्मुख होकर नाथ की अर्चना करते हैं। कौन करते हैं? बारस गणाते, 12 समूह पूरे के पूरे सब मिलकर अर्चना करते हैं भगवान की। तो इससे स्पष्ट हुआ कि गणधर देव भी द्रव्यों से भगवान की अर्चना करते हैं। अर्चना की परिभाषा ही यह है, बिना द्रव्यों के अर्चना नहीं होती है, द्रव्यों से अर्चना करते हैं। और पूजा के बारे में भी यही लिखा है, धवला की 8वीं पुस्तक में पूजा की जो परिभाषा दी है उसमें यह लिखा है कि अर्चना पूर्वक जो बड़े बड़े मांडने बना करके भव्य विधान आदि किए जाते हैं उनको अर्चना कहते हैं। उसमें नाम भी लिखा है, इंद्रध्वज, कल्पद्रुम आदि बड़े बड़े जो अनुष्ठान होते हैं वो पूजा कहलाती है। अर्चना, द्रव्य अर्पित करके भगवान की भक्ति करना, अपनी भक्ति को प्रकट करना अर्चना है, और बड़े बड़े विधान करना पूजा है। तो छोटी पूजा अर्चना हो गई, बड़ी अर्चना पूजा हो गई, ऐसा अपन बोलचाल में बोलते हैं। तो ये फिर कह रहे हैं अपने स्थान पर वो कब बैठते हैं 12 समूह। तो आचार्य लिख रहे हैं, यति वृषभ आचार्य जिन्होंने कसाय पहाड़ पर चूर्णी सूत्र लिखे हैं, और उसके बाद जय धवला टीका वीरसेन आचार्य और जिनसेन आचार्य दोनों ने मिलकर किए। तो बड़े आचार्य थे यति वृषभ आचार्य। वो क्या कह रहे हैं, थुदूण सुथुदिश असंख गुण सेड़ी कमणि जरणम कादून पसन्न मरना नियणीय कोठे सुपविसंती। फिर सैकड़ों स्तुतियों के माध्यम से वे 12 समूह भगवान की स्तुति करते हैं, और असंख्य गुण सेड़ी कम निजरणम कादू, और इन सब विधियों के द्वारा असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा, पापों की निर्जरा करके प्रसन्न मना, प्रसन्न मन होकर, विशुद्ध होकर नियनीय कोठे सुपविशंति, अपने अपने कक्षों में प्रवेश करते, अपने अपने कोठों में अंदर जाते हैं, कोठों के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। परम पीड़ा समत्ता, ये प्रथम पीठ यहां पर पूर्ण होती है। द्रव्य कौन सी पीठ में है, कहीं हम चूक तो नहीं गए? तीसरी पीठ हम बोल रहे थे, प्रथम पीठ के ऊपर उपर्युक्त 12 कोठों में से प्रत्येक कोठों के प्रवेश द्वारों में और समस्त वीथियों में, चार वीथियों के सम्मुख 16-16 सीढ़ियां होती है। वृषभ देव के स्वरण समवसरण में प्रथम पीठ का विस्तार 12 से भाजित 24 कोस था। फिर क्रमशः एक एक अंश कम होता चला गया। पार्श्वनाथ तीर्थंकर के समवसरण में प्रथम वेदिका का विस्तार 24 से भाजित 5 कोस था, और वर्धमान भगवान के 6 से भाजित 1 कोस प्रमाण, यानी एक कोश का छठा हिस्सा था वहां पर उस वेदिका का विस्तार। और पीठों की परिधियों का प्रमाण अपने अपने विस्तार से त्रिगुणित होता है, 3 गुना होता है। ये पीठिकाएं उत्तम रत्नों से निर्मित और अनुपम शोभा से संपन्न होती है, चूड़ी के सदृश अर्थात गोल आकृति वाली, और नाना प्रकार के पूजा द्रव्य और मंगल द्रव्यों से सहित इन पीठों पर चारों दिशाओं में सिर पर धर्म चक्र धारण किए हुए यक्षेंद्र स्थित होते हैं। तो फिर ये प्रथम पीठ का वर्णन है, तो हमसे भूल हो गई जिनवाणी माता, हमें क्षमा करें। तीसरी पीठ हमने कह दिया था, तीसरी पीठ पर तो ऊपर भगवान विराजमान होंगे। वे गणधर देव आदि 12 गण उन पीठों पर चढ़कर और प्रदक्षिणा देकर जिनेंद्र देव के सम्मुख होते हुए पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। पश्चात सैकड़ों स्तुतियों द्वारा कीर्तन करके वे असंख्यात गुण श्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा करके प्रसन्न चित्त होते हुए अपने अपने कोठों में प्रवेश करते हैं। ये नियम है कि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा सम्यक दृष्टि जीवों के बिना नहीं होती, किसी को मिथ्यात्वियों को नहीं हो सकती। तो ये सारे सम्यक दृष्टि जीव हैं। तो इस तरह अपन ने देखा कि मुनिराज भी द्रव्यों से पूजा कर सकते हैं। जब आप लाड़ू चढ़ाते हैं भगवान को कभी, और कोई मुनिराज विराजमान हो और उनको इन विषयों की जानकारी हो, तो आप अगर उनके सामने थाली ले जाएंगे तो वो उसको ऐसे हाथ लगा देंगे, और अगर जानकारी नहीं होगी तो फिर वह अपनी तटस्थता रखेंगे। तो ये अपन ने आज इसमें समझा है, तिलोई पंडिती ग्रंथ में ये उल्लेख देखा अपन ने। अब जो प्रश्न था कि शासन देवताओं के प्रति श्रावकों का, श्राविकाओं का, अथवा जिन भक्त सम्यक दृष्टि जीवों का क्या बर्ताव होना चाहिए, तो उस पर अपन विचार कर रहे हैं। हमने कहा था कि पांच प्रकार से इनकी आराधना करते हैं, पांच अभिप्रायों से, ठीक है ना। वो बाह्य जो सामग्री वगैरह है वो तो एक जैसी रहती है, जैसे जो भोजन की थाली होती है वो उसी थाली, वैसी थाली से आप मुनि महाराज को भी आहार कराते हैं, वैसी थाली से आरिका माता जी को भी आहार कराते हैं, वैसी थाली से क्षुल्लक एलक क्षुल्लिकाओं को भी आप आहार देते हैं, तो वो उसमें अंतर नहीं होता। यहां पर अभिप्राय में अंतर होता है। तो अभिप्राय में अंतर है तो अपन देखते हैं। हमने पांच श्रेणियां खोजी थी शास्त्रों में। उन पांच में सबसे पहले अपन देखते हैं कि आचार्य सोमदेव सूरी विरचित यशस तिलक चंपू ग्रंथ के अष्टम आश्वास में लिखा है, देवं जगत त्रयी नेत्रम व्यंतराद्याश्च देवताः समं पूजा विधानेषु पश्यन् दूरं व्रजेदधः। तीनों जगत के लिए नेत्र के समान, जैसे नेत्र अपने को सब पदार्थ के दर्शन कराते हैं, वैसे ही जिनेन्द्र देव तीनों जगत को दिखला देते हैं भव्य जीवों के लिए। जो भी वहां जाकर उनके उपदेश का श्रवण करते हैं तो एक उदाहरण देते हैं हम आपको, धृतराष्ट्र की जो कथा आती है महाभारत में, संजय उनको सब कुछ बताता था, उनको धृतराष्ट्र जी को कुछ दिखता नहीं था, तो संजय उनको बताता था बस। वैसे ही ये जो छद्मस्थ प्राणी है उनको अपने ज्ञान से तीनों लोक और तीनों काल के दर्शन नहीं हो सकते, जो अवधि ज्ञानी है उनको तीन लोक के तो हो सकते हैं लेकिन तीनों काल के नहीं हो सकते। तो जिनेन्द्र देव उन सबके लिए नेत्र के समान है। जिनेन्द्र देव तीनों लोक तीनों काल के दृष्टा है, तो वो इनको दर्शन कराते हैं। तो इनको दर्शन कराते हैं इसलिए आचार्य महाराज ने जिनेन्द्र देव को नेत्र कहा, नेत्र की उपमा दी है। भगवान तीनों जगत को दिखलाने के लिए नेत्र के समान है और आराध्य है उनको। और व्यंतराद्याश्च देवताः, और ये जो उनके भक्त देव हैं, अब देखिए वो तो स्वामी हैं और ये सेवक हैं, तो इन सेवक व्यंतरादिक देवताओं को पूजा विधानेषु, पूजा के विधान अर्थात अनुष्ठानों में समम पश्यन, समान मानने वाला, दूरम अधः व्रजेत, स्वामी और सेवक को समान मानने वाला, दूरम अधः बहुत दूर नीचे व्रजेत चला जाता है, अर्थात वह दुर्गति का पात्र बन जाता है। अब दुर्गति जो होती है कभी सम्यक दृष्टि की नहीं होती, मिथ्या दृष्टि की ही होती है। तो ये प्रथम अभिप्राय जो है यहां पर अपन देख रहे हैं, पांच में से प्रथम श्रेणी जो है वो मिथ्यात्व रूप अभिप्राय को धारण करने वाले जीवों की श्रेणी है, मिथ्या दृष्टियों की श्रेणी है, जो भगवान को और उनके सेवक को देवताओं को समान मानकर, पूजा विधानेशु, पूजा विधानेशु, इस पर ध्यान दीजिएगा, पूजा विधाने नहीं लिखा है। पूजा विधान का अर्थ होता है पूजा का अनुष्ठान। एक वचन नहीं दिया, बहुवचन दिया। बहुवचन दिया इसका अर्थ यह हुआ कि इनकी पूजा अलग और उनकी पूजा अलग होती है, दोनों की पूजा कभी भी एक नहीं हो सकती। अब बात ऐसी है कि पूजा अलग हो रही है, मान्यता अगर समान हो तो क्या हानि होती है, ये यहां पर सूचित किया गया। पूजा अलग हो रही है तो फिर मान्यता भी आप अगर अलग रखोगे उसमें, उसकी पूजा का अर्थ समझना आप। जैसे मंच पर बहुत से ऐसे गणमान्यों का गुरुओं के चरण सानिध्य में, उनके गरिमापूर्ण सन्निधान में सत्कार होता है। और सत्कार शब्द का अर्थ अपन जानते हैं, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा है सत्कार का अर्थ, पूजा और प्रशंसा। तो आप देखिए तो सही, जिनका वहां पर सत्कार हो रहा है वो खाली हाथ तो नहीं हो रहा है ना, उनको कितनी सारी वस्तुएं भेंट दी जा रही है, तो ये भेंट करने का नाम ही तो पूजा है। तो इनकी पूजा और उनकी पूजा, इन पूजा के अनुष्ठानों में बहुवचन दिया है, जो समम पश्यन, जो ये भूल कर रहा है, ये गलती कर रहा है, बल्कि ये अपराध कर रहा है कि स्वामी और सेवन को, सेवक को समान मान रहा है, वह दूरम अधः व्रजित, वह बहुत दूर नीचे चला जाता है। तो ये पहली श्रेणी हुई जो मिथ्यात्व रूप अभिप्राय के साथ उनकी आराधना करने वाले आराधना कर बैठते हैं, वो अशुभ गति के पात्र बन जाते हैं। ये पहली श्रेणी होगी। अब दूसरी श्रेणी कौन सी है? तो अपन दूसरी श्रेणी की चर्चा करते हैं। वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसा, वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसा, देवता यदुपासीत देवता मूढमुच्यते। जो अपन स्वाध्यायी जनों के मुंह पर एक शब्द है, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता, तो यहां पर देव मूढ़ता की बात करते हुए कह रहे हैं। देव मूढ़ता का दोष कब लगता है? तो पहले तो देव मूढ़ता का स्वरूप बताया। वर का अर्थ था वरदान, उसकी उपलिप्सा, उपलिप्सा का अर्थ होता है उपलब्धि, उपलब्धि की इच्छा, उपलब्धि की इच्छा को उपलिप्सा कहते हैं। तो वरदान उपलब्धि की इच्छा के साथ आशावान, आशान्वित होता हुआ जो मनुष्य राग द्वेष मलि मसाह देवता, राग द्वेष से मलिन देवताओं की। अब यहां पर देवता शब्द का अर्थ देव गति के देवता नहीं है, जो उत्सर्ग कथन है उसकी अपेक्षा। अपवाद कथन में तो अपन और विचार करेंगे, दो प्रकार के कथन बताए शास्त्रों में, एक उत्सर्ग कथन। उत्सर्ग का कथन का अर्थ होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्थ है, जो सीधा सीधा राजमार्गी अर्थ है, उसको उत्सर्ग कथन कहते हैं। और अपवाद कथन का अर्थ क्या है? जो पगडंडी वाला रास्ता है, वहां से निकलने वाला अर्थ। तो इन दोनों अर्थों पर अपन विचार करते हैं। सबसे पहले उत्सर्ग कथन में जाएं, तो उत्सर्ग कथन में देवता शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा। क्योंकि ये प्रकरण सम्यक दर्शन का चल रहा है, और सम्यक दृष्टि जो परमात्मा की आराधना करता है उसमें कहां कैसे दोष लगते हैं उसका विवरण चल रहा है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष से मलिन देवताओं की जो आशावान होकर वरदान प्राप्ति की इच्छा से उपासित उपासना करते हैं, जो भी लोग करते हैं देवता मूढ़ मुच्यते, वह उपासना देवता मूढ़ कही जाती है, अर्थात देव मूढ़ता कही जाती है। जैसे भोले शंकर की आराधना कर रहा है कोई, तपस्या कर रहा है वरदान पाने की इच्छा से, तो फिर वो उसकी अज्ञानता मानी जाएगी, क्योंकि आप वरदान पा पा करके संसार से पार नहीं हो सकते। वरदान पाकर कोई शक्ति संपन्न तो हो सकता है, लेकिन विवेक संपन्न हो जाए, चारित्र संपन्न हो जाए और मोक्ष को प्राप्त कर ले, ये कैसे संभव है? तो यहां ये कहा जा रहा है कि उनकी उपासना करना, इस लोभ से उपासना करना देव मूढ़ता है। देवता मूढ़म तत् उच्यते यत् उपासित आराधयित। देवता मूढ़ उसे कहा जाता है जो उपासना करता है, आराधना करता है। कहा किनकी आराधना? देवता, देवताओं की आराधना करता है। कथम भूता, किस प्रकार के देवताओं की? राग द्वेष मलि मसा, राग और द्वेष से मलिन देवताओं की। राग द्वेषाभ्याम मलि मसा मलिना, उनकी आराधना करता है, उपासना करता है। किम विशिष्ट, वो स्वयं कैसा होते हुए उपासना करता है? निस्वार्थ भाव से करता है क्या? नहीं, आशावान, आशावान होकर, आशाओं से संपन्न होकर उपासना करता है। अब आशाओं से संपन्न का अर्थ क्या लेंगे? ऐहिक फलाभिलाषी, इस भव संबंधी फलों की अभिलाषा रखता हुआ। क्या कैसे करता है आराधना? तो वरोपलिप्सया, वरस्य वांछित फलस्य उपलिप्सया प्राप्तुम इच्छया, वांछित फल को प्राप्त करने की इच्छा के साथ करता है। ये एक कथन था। अब अपवाद कथन की बारी आती है कि भाई राग द्वेष से मलिन देवगति के देव भी होते हैं। ठीक है, हुंडाव सर्पिणी काल में परमात्मा को भी कुछ संसारी प्राणियों ने रागी द्वेषी स्वरूप में स्वीकार किया हुआ है, और उनकी वो आराधना करते वरदान पाने की इच्छा से। तो देवगति के जो देव हैं उनकी भी तो कई लोग आराधना करते हैं, उनकी भी तो कई लोग अर्चना करते हैं, कई लोग उपासना करते हैं, तो उनका क्या? तो आचार्य कहते हैं कि ठीक है, उनका भी हम समाधान करते हैं। वो अपवाद कथन के रूप में देखिए, तो ननु एवं, शंकाकार का प्रश्न है कि ननु, अगर ऐसी बात है कि रागी द्वेषी आराध्यों की आराधना देव मूढ़ता है, लोभवश की गई आराधना देव मूढ़ता है, तो हम नहीं जानते कि इन देवताओं की उपासना करने वाले सम्यक दृष्टि जीव या श्रावक गण लोभ से कर रहे हैं या बिना लोभ से कर रहे हैं, हमें क्या पता? और वो उनकी आराधना करते तो हैं, श्रावक लोग भी करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं, शासन देवताओं की आराधना करते हैं, तो क्या उससे सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा? देखिए, आचार्य प्रभाचंद्र देव की पंक्ति है, एक जानकारी देते हैं आपको कि अभी वर्तमान में कुछ ऐसा प्रचार चल रहा है कि समंदभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के टीकाकार प्रभाचंद्र आचार्य 700 वर्ष पुराने कोई भट्टारक थे, कोई जैनाचार्य ना होकर के भट्टारक थे। तो अगर वो भट्टारक थे और फिर वो ये सारी चर्चा निकाल रहे हैं, तो उनकी बात को हम प्रामाणिक कैसे माने? ऐसी एक अभी बीच में कुछ समय पहले एक चर्चा मीडिया पर आई है, तो हम आपको एक जानकारी दे दें। पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, इनका नाम विद्वत जगत में बहुत ऊंचा नाम है। तत्वार्थ राजवार्तिक का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। साधारण श्रेणी के विद्वान नहीं थे, न्यायाचार्य। न्यायाचार्य होने के लिए 6 खंड, न्याय के जो 6 खंड होते हैं उनका पूरा अध्ययन संपन्न करना होता है। उन्होंने इस विषय में शोध करके लिखा है कि ये प्रभाचंद्र आचार्य कौन है। तो उन्होंने इनका काल, ये 700 वर्ष प्राचीन काल न बताते हुए और अधिक प्राचीन बताया है, और इनको भट्टारक न बताते हुए इन्होंने एक दिगंबर आचार्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्य के रूप में स्वीकार किया है। तो अभी के चिंतकों द्वारा प्रसारित प्रभाचंद्र आचार्य के परिचय को अपन प्रामाणिक मानेंगे, अथवा उन प्रकांड विद्वान पंडित न्यायाचार्य महेंद्र कुमार जी के शोध को प्रामाणिक मानेंगे। इस पर विचार करना है, ठीक है? तो हम आगे की पंक्ति पढ़ रहे हैं। नन्वेवम श्रावकादीनां शासन देवता पूजा विधानादिकं सम्यक्तं म्लानता हेतु प्राप्नोति इति चेत। शंकाकार प्रश्न कर रहा है कि ठीक है, देवमूर्ता हमारी समझ में तो आ गई, लेकिन यहां पर जैन धर्म वाले जो श्रावक आदिक हैं, वे शासन देवताओं के पूजा विधान आदिक करते हैं, तो शासन देवताओं के पूजा अनुष्ठान सम्यक्त की मलिनता के कारण प्राप्त हो जाते हैं? आपके कथनानुसार, आपकी परिभाषा के अनुसार मलिनता का कारण हो जाते हैं, यानी उनका सम्यक तो मैला हो जाएगा जो भी शासन देवताओं की आराधना करेगा। तब आचार्य महाराज, ये प्रश्न उनके सामने आया हुआ है, अब आचार्य उत्तर दे रहे हैं। एवं इतित, बिल्कुल ऐसी बात है, सही बात है। यदि, अब इसमें यदि शब्द जुड़ा हुआ है, ऐसा ही होगा, श्रावक आदिक शासन देवताओं के पूजा विधान करेंगे तो उनका सम्यक तो मलिन होगा, यदि वरोपलिप्सया कुर्यात्, वांछित फल को प्राप्त करने की आकांक्षा से करेंगे तो। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें दो भेद हो गए, एक वांछित फल की आकांक्षा से, वरदान प्राप्ति की इच्छा से अगर शासन देवताओं की आराधना करते हैं तो सम्यक दर्शन मलिन होता है, क्योंकि शासन देवताओं का काम नहीं है कि वो वरदान बांटते फिरे, शासन देवताओं का काम है जिन शासन की रक्षा करना, और उनसे ये देवों की शक्तियों का परिचय शास्त्रों से पढ़ करके प्राप्त करके उनको रिझा रहा है, उनकी आराधना कर रहा है वरदान पाने के लिए। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा करने पर सम्यक तो मलिन होगा। सम्यक तो मलिन क्यों होगा? शासन देवताओं में भी रागद्वेष तो ही है, और ये वरदान की इच्छा करने वाले में भी रागद्वेष है, तो इसका सम्यक तो मलिन क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वो देव जिन शासन की रक्षा के लिए प्रतिनियत है, तो आप सम्यक दृष्टि होकर उनको उनका काम करने दो ना। आप अपने स्वार्थ की पुष्टि उन देवों से क्यों करना चाहते हैं? क्या देवों की कमी है संसार में? कितने सारे विद्या देवता हैं, बड़े बड़े सम्यक दृष्टि विद्याधरों ने, जो कि तद्भव मोक्षगामी थे, उन्होंने उन विद्या देवताओं की आराधना की है। इंद्र नाम का विद्याधर आपने नाम सुना होगा, रावण ने जिसको पराजित किया था। कहते हैं कि रावण ने इंद्र को जीत लिया था, वो इंद्र विद्याधर था, उस इंद्र को जीतने वाले रावण की चर्चा अपन ने सुनी है, तो वो इंद्र कौन था? रत्नोपुर चक्रवाल नाम का एक नगर है, वैताड्य पर्वत पर है वो, और वहां का इतना अखंड पराक्रमी राजा था कि उसने अपना साम्राज्य संपूर्ण मनुष्य लोक में विस्तृत करके रखा। संपूर्ण इधर ये क्या बोलते भरत क्षेत्र में उसका साम्राज्य विस्तृत था। उसने कितनी विद्याएं सिद्ध की थी, जबकि उसको मोक्ष जाना था उसी भाव में, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव था, तब भी उसने विद्याएं सिद्ध की। और विद्याओं को सिद्ध करने के लिए उन देवताओं की आराधना करनी होती है, बिना आराधना के विद्याएं सिद्ध नहीं होती। तो सम्यक दृष्टि होकर के भी उनने विद्याओं की आराधना की थी और विद्याओं को सिद्ध करके पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। और यहां पर शासन देवताओं के माध्यम से वो अपनी इष्ट प्राप्ति चाह रहा है तो सम्यक तो मलिन हो रहा है। इंद्र विद्याधर ने शासन देवताओं से स्वार्थ पूर्ति नहीं की थी, विद्या देवताओं से उसने अपना कार्य सिद्ध किया था, तो उसके सम्यक में मलिनता नहीं आई थी। लेकिन ये अगर कोई श्रावक अधिक शासन देवताओं के माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, शासन देवता का एक गरिमापूर्ण स्थान है जिन शासन में, वो जिन शासन की सुरक्षा में नियुक्त है, वो अपने आप को धन्य भाग्य मानते हैं कि हमें महावीर भगवान के शासन में गुह्यक यक्ष और सिद्धायिनी यक्षी इन दो को यह कार्य दिया गया है कि पंचम काल के अंत तक तुम जिन शासन की रक्षा करते रहना, और वो कर रहे हैं रक्षा। इस शासन का समूल नाश नहीं हो सकता, कुछ क्षतियां हो सकती है काल के दोष से, लेकिन जब तक ये शासन देव हैं तब तक समूल नाश नहीं होगा। आदिनाथ भगवान का शासन कितना लंबा चला आप विचार कीजिए, जब तक उनके शासन देवता की आयु थी तब तक चला नहीं, आयु पूर्ण होने के बाद उनके स्थान पर जो आए वो भी शासन की रक्षा करते रहे, चलता रहा शासन। अजितनाथ भगवान आए तब उनका शासन प्रारंभ हुआ, तो 50 लाख करोड़ सागर तक आदिनाथ भगवान का काल चलता रहा, सोचिए आप। तो ये सम्यक की मलिनता का कारण तब बनता है जब आप जिन शासन के देवों से अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहो और उनकी आराधना उनके पूजा विधान आदि यदि आप भिन्न अभिप्राय से करते हो तो फिर ये तीसरी श्रेणी बनती है, ध्यान देना। तीसरी श्रेणी, पहली श्रेणी क्या थी? अभिप्राय में मिथ्यात्व था क्योंकि स्वामी और सेवक का भेद ही उसको पता नहीं। दूसरी श्रेणी क्या थी? दूसरी श्रेणी ये थी कि जिनसे, यानी आप समझ लो कि आप आभूषणों की दुकान पर नारियल खरीदने चले गए तो सम्यक मलिन हो गया। आभूषणों की दुकान कौन सी है? जो जिन शासन रक्षक देवता हैं वो है, और आप सांसारिक कामना से उनकी आराधना में लग गए तो फिर वो नारियल खरीदने जैसी स्थिति हो गई। आप उनसे अगर ये कहें शासन देवताओं से कि हमारे धर्म ध्यान में विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो आप हम धर्म ध्यान कर सके, जिन शासन की प्रभावना कर सके उसमें आप हमें मदद कीजिए, तो आपका सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा और आप उनके योग्य उनकी पूजा करके अयोग्य पूजा मत करना। जो जिस पूजा के योग्य है उस पूजा को करके आप अगर उनसे ऐसी भावना करो तो कोई आपत्ति नहीं है। आचार्यों ने भी जिन शासन देवताओं से कुछ मांगा है, अभी इसमें हरिवंश पुराण में आगे एक श्लोक आएगा आप देखिएगा, तो उसमें आचार्य जिनसेन स्वामी कह रहे हैं कि आप जिन शासन के विघ्नों को दूर करो ऐसी हम आपसे याचना करते हैं, ये आचार्य महाराज कह रहे हैं, तो कितनी समझने की बात है ये। तो इस विषय को अपन और आगे चलाएंगे, आज इतना ही रखते हैं। आज अपन ने देखा कि एक तो मिथ्यात्व की श्रेणी में आराधना होती है, दूसरी देव मूढ़ता की श्रेणी में आराधना होती है, यानी सम्यक तो मलिन होता है, और तीसरी जो है उसकी चर्चा अभी अपन ने वो वाक्य पढ़ा नहीं है, लेकिन उसको अपन पढ़ेंगे। ये दो श्रेणियां अपने को स्मरण में, स्मृति में रखनी है। जैनम जयत शासनम। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रह असिया उषा जिन देव जिन चैत्य आदि नव देवताभ्यो देव शास्त्र गुरुभ्य अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा।